آپ SBS اردو سن رہے ہیں۔ گولڈ کوسٹ میں 11ویں پین پیسیفک ماسٹرز گیمز ہو رہے ہیں اور ان کھیلوں میں 40 ممالک کے 15,500 سے زیادہ کھلاڑی اور ایتھلیٹ حصہ لے رہے ہیں۔ اور اسی سلسلے میں اس وقت ہم بات کر رہے ہیں محمد شہزاد صاحب سے، جنہوں نے اس وقت کانسی کا تمغہ مقابلوں میں روئنگ کے حاصل کیا ہے۔ ان سے اس کی تفصیل بھی معلوم کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کو یہاں نمائندگی کر رہے ہیں۔ محمد شہباز صاحب، ایس بی ایس ریڈیو کے اردو لینگویج پروگرام میں آپ کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے یہاں برانز میڈل حاصل کیا، پاکستان کا نام روشن کیا۔ تھوڑا ہمارے سامعین کو پہلے یہ بتائیے کہ کس قسم کے مقابلے ہو رہے ہیں جو پین پیسیفک ماسٹرز گیمز ہیں، اس میں کچھ عمر کی حد ہے جس میں لوگ شرکت کر سکتے ہیں؟
جی، یہ ماسٹرز کے حوالے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہے نا ماسٹرز مطلب ابو 30 ایئرس کی ایج گروپ ہے اور اس میں ہر 5 ایئرس کے اوپر جو ہے نا ایج بریکٹ ہوتا ہے۔ جیسے میں نے 55 ٹو 60 کے جی ایج گروپ میں پارٹیسپیٹ کیا، تو اسی طرح یہ مطلب اس کا ریکارڈ ہے اس دفعہ کہ 93 ایئرز اولڈ کا بندہ بھی 90 پلس کیٹیگری میں اس میں پارٹیسپیٹ کر رہا ہے۔ یہ بھی ایک ریکارڈ ہے ان کا خود ہی پین پیسیفک میں۔ آج تک آسٹریلیا میں 93 کے بندے نے کسی کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا۔
تو اس ان مقابلوں میں جو گولڈ کوسٹ میں اس وقت ہو رہے ہیں، ان میں 93 سال تک کی عمر کے ایتھلیٹ اور کھلاڑی حصہ لے رہے ہیں، اور خود آپ نے 60 سے 65 سال کی عمر کی کیٹیگری 55 ٹو 60 میں 55 سے 60 سال کی عمر کے افراد کے جو کھیلوں کے روئنگ کا مقابلہ ہے اس میں آپ نے حصہ لیا ہے، اور اس میں کانسی کا تمغہ آپ نے آج ہی جیتا ہے۔ یہ بتائیے یہ کس طرح کا روئنگ کا مقابلہ ہے، کیونکہ روئنگ کے بارے میں پاکستانیوں کی معلومات ذرا کم ہے، ہم لوگ ٹی وی پہ اور ویسے کلپس میں تو دیکھ لیتے ہیں، تو یہ روئنگ کے مقابلہ کس طرح کے ہیں جس میں آپ نے حصہ لیا؟
اچھا، یہ روئنگ ایکچولی واٹر اسپورٹس ہے، اور ایک ہمارے جو پاکستان کے بیرام ٹی اواوری تھے وہ یاٹنگ میں جیتتے تھے ایشین میڈلز بھی، جو کہ بادبانی کشتی والی کشتی ہوتی ہے جو ٹوٹل آدمی کی پاور پہ کھینچتی ہے اور اس میں بہت زیادہ اسٹیمنا چاہیے ہوتا ہے۔ ایون اگر ہم دیکھیں تو اوپرا سنگرز جو ہوتے ہیں نا ان کا ہارٹ جو ہے نا وہ 7 لیٹر پلس سے ہوتا ہے زیادہ، اور صرف روورز کا ہارٹ ہے جو 7-8 تک جاتا ہے۔ یہ اتنی ڈیمانڈنگ اسپورٹ ہے اور جس کی وجہ سے پلس بہت ڈاؤن ہوتی ہے، ایتھلیٹ ہارڈ ہوتا ہے، ہاتھ بڑا ہو جاتا ہے، اگر وہ ہارڈ بڑا نہیں ہو تو وہ پلیئر اچھا ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو اس کو چیک کرنے کے لیے، کیونکہ پہلے پتا نہیں چلتا تھا اسٹار کا ایک کرو رو کر رہا ہے یا پیئر رو کر رہی ہے روئنگ میں، آؤٹ سائڈ جو واٹر پہ اسپورٹس ہوتے ہیں ریسز ہوتی ہیں، تو انہوں نے اس کو چیک کرنے کے لیے ایک روئنگ مشین بنائی۔ تو کانسیپٹ ٹو امیرکا کی کمپنی، اس کی بیسٹ روئنگ مشین ہے، وہ ایگزیکٹ روئنگ کا رزلٹ دیتی ہے۔ تو انہوں نے اس حساب سے پہلے پلیئر کو چیک کرنا شروع کیا، دین دے ریئلائز کہ یہ تو اتنا چلنا شروع ہو گیا، اتنی زیادہ فٹنس شروع ہو گئی کہ اس کے اوپر تو جتنے بھی پلیئر جیسے رگبی پلیئرز ہیں جن میں بہت اسٹیمنا اور بہت پاور چاہیے، تو اس کو چیک کرنے کے لیے بھی یہ سپر مشین ہو گئی۔ تو آج یہاں پہ صرف روورز پارٹیسپیٹ نہیں کرتے، مطلب جو رگبی پلیئرز ہیں اور ایسے پلیئرز جن کو اسٹیمنا ود پاور کے ساتھ چاہیے ہوتا ہے اسٹیمنا، وہ بھی اس میں کمپیٹ کرتے ہیں۔ تو اس کے اوپر پھر یہ انہوں نے انڈور روئنگ کمپٹیشن ہی کرانے شروع کر دیے، کیونکہ یہ اتنا اسپورٹس مطلب چاہنے لگا، اور اس کے امریکہ میں تو جب سیزن شروع ہوتا ہے جب آؤٹ ڈور روئنگ بند ہوتی ہے تو انڈور روئنگ کے ایوری ویک یو ول گیٹ لائک 3-4 کمپٹیشن اور 6 کمپٹیشن ان اے ویک، جو سیٹرڈے اور سنڈیز کو وہ کرتے ہیں۔ تو یہ اس وجہ سے بہت مشہور ہو گیا یورپین کنٹریز میں، ہماری ایشین کنٹریز میں، کیونکہ ہم تو وہ کیا سمجھتے ہیں کہ بندہ 50 سے اوپر گیا تو یہ بوڑھا ہو گیا، اور یہ 3 سال بعد 60 کا ہو کر اس نے ریٹائر ہو جانا ہے، پھر اس نے زندگی ایسے گزارنی ہے، لیکن یہ تو ان کی تو لائف ہی آفٹر 60 اسٹارٹ ہوتی ہے، اور یہ 70-80-90 تک کھیلتے رہتے ہیں۔ جیسے آج 85-90 کا بھی کمپٹیشن تھا، 82-85 کا بھی کمپٹیشن تھا، اس طرح زیادہ اوپر کی ایج کے گروپس کے بھی کمپٹیشن تھے۔ تو یہاں پہ بیسکلی لائف ہی روتی ہے، اور یہ ڈیفینیٹلی آپ کی لائف ایکسپیکٹینسی بڑھاتی ہے، ये बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग स्पोर्ट्स है।
तो ये रोइंग के मुकाबले जो थे ये किस कैटेगरी के कहलाते हैं और इसमें कितने एथलीट हिस्सा ले रहे थे?
कैटेगरीज जो ये कहेंगे ये तो इस वक्त क्योंकि ये तो वर्ल्ड के ही मास्टर गेम्स है, क्योंकि कुछ ही जगहों के ऊपर आपको ये मास्टर गेम्स मिलते हैं, खासतौर पर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में, बाकी और कोई भी मास्टर गेम्स इतना होते ही नहीं है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये वर्ल्ड लेवल, और जैसे मैं पाकिस्तान से हूँ तो अगर मैं इंडिया में भी देखूँ तो मुझे मेरे पाकिस्तान में तो कोई है ही नहीं जो इस वक्त रो कर रहा हो या इतना आ रहा हो। इवन के जो कराची के अंदर सिर्फ एक क्लब है, कराची बोर्ड क्लब है, तो उसके अंदर यंग बच्चों में भी मेरा कोई दूसरा या तीसरा नंबर आता है, क्योंकि वो भी 7 मिनट के लगभग रो नहीं कर सकते, वो भी 7:25, 7:30 इस पे रो कर रहे हैं। तो अल्लाह का शुक्र है।
तो ये जो मुकाबला हो रहा था रोइंग का, ये क्या 2000 मीटर कहलाता है और इसमें कितने
डिफरेंट रेसेस होती हैं? मतलब जिस तरह हम 100 मीटर होता है रेसिंग में, 200 मीटर होता है, 400 मीटर होता है, तो इस तरह इन्होंने इस दफा इंडोर रोइंग कॉम्पिटिशन जो है उसमें 5 इवेंट रखे, जिसमें से सबसे पहला इवेंट था 2 किलोमीटर 2000 मीटर की रेस। अभी दोपहर में मेरा फिर एक कॉम्पिटिशन है, वो 500 मीटर की रेस है। तो कल सुबह होगी फिर 100 मीटर की रेस, और फिर उसके बाद होगी 1000 मीटर की रेस, और फिर एक रन होगा 1 मिनट की रेस होगी वो।
तो आपका जिसमें तो इसमें तो जो 2000 मीटर वाली थी इसमें आपने कांसी का तमगा हासिल किया है, तो दूसरे जो मुकाबले हैं क्या किसी और में भी आप हिस्सा ले रहे हैं?
जी जी जी, मैं अल्लाह का शुक्र पांचों कॉम्पिटिशन में, 500 जो इवेंट्स हैं उन 500 इवेंट्स में हिस्सा ले रहा हूँ। तो अभी आज मतलब इंशाल्लाह उम्मीद है, देखिए आगे भी और उम्मीद है अल्लाह से,
और उम्मीद है कि आप और भी तमगे यहाँ से जीतने में कामयाब हो जाएंगे। अब ये बताइए कि आप बुनियादी तौर पे तो एक मैकेनिकल इंजीनियर थे, तो ये रोइंग की तरफ आप किस तरह आपका आना हुआ और कैसे ये शौक बिल्डअप हुआ पाकिस्तान जैसे मुल्क में?
जी वो किस्मत कहते हैं कि मैं बैडमिंटन में था पहले, तो वहाँ से मेरा को हाइट और बिल्ड की वजह से मुझे कोई इतना एडवांटेज नहीं मिल रहा था। तो एक दिन वो बोर्ड क्लब में हमारी एक जर्मन लेडी है, वो वहाँ जर्मन कॉन्सुलेट में काम करती थी, मिसेस कुरशी, तो वो मुल गई। उन्होंने मेरे से बोला, इनवाइट किया कि यार आपकी हाइट अच्छी है, बिल्ड अच्छी है, आप रोइंग में आ जाओ। तो मैंने कहा मैं तो रोइंग नहीं जानता। उन्होंने कहा नोबडी नोज रोइंग, यू हैव टू लर्न इट, तो आप आए और आप सीखे। तो वो फिर मैं इस तरीके से उसमें चले गए, और उन लेडी का बहुत बड़ा एफर्ट है पाकिस्तान में इंटरनेशनल रोइंग लाने वाली, वो ही है क्योंकि वो जर्मन कॉन्सुलेट में काम करती थी, तो उन्होंने जर्मनी से बोट जो है ना डोनेट कराई पाकिस्तान को। तो इस तरीके से, वरना हम तो वो पंजाब के अंदर वो जो चौड़ी चौड़ी वो जो लकड़ियों वाली किश्ती होती है समझे, जो कि कभी आप देखा होगा कि मतलब दरिया वगैरह में भी चल रही होती है, तो उसी पे खेलते थे रेस में अगर कोई होती थी। तो ये इंटरनेशनल रोइंग उन्होंने मुतारिफ की 80s के अंदर आके अपने जर्मन कॉन्सुलेट से मुफ्त में डोनेट पाकिस्तान को की। फिर उन्होंने स्लोली स्लोली वो MI अर्शद साहब थे हमारे सिंध के प्रेसिडेंट, वो कराची बोटर्स के चेयरमैन थे, तो उनसे वो थोड़ी सी जगह ली गई, यार मैं बोटे रख लूँ इधर, तो उन्होंने परमिशन दे दी रख ले। तो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने वहाँ पे पंटून लगाया, नेवी को लेकर आई, नेवी ने भी बड़ा सपोर्ट किया। तो इस तरीके से उन्होंने वहाँ एक क्लब बना लिया, जो हम लोगों ने एक एक ईंट अपने हाथों से उठाकर बनाई है। तो हम लोग का टाइम होता था सुबह शाम ड्राइंग करते थे, और बीच में जो अगर हम क्लब बनाते थे रात रात तक काम होता था, इवन क्लब की एक जो पुरानी बिल्डिंग वहाँ के पे खड़ी थी उसको गिराना था। तो हम लोग जब वो मजदूरी कर रहे थे तो मेरे दोस्त ने काम कहा, या शहजाद आगे दुनिया में कुछ भी हो इंशाल्लाह हम भूखे नहीं मरेंगे क्योंकि हमें ये मजदूरी आ गई है। तो हमने माशा सारा वो किया और उसको अपने हाथों से खड़ा किया पूरे क्लब को, वहां से हमने जो है ना रोइंग को ग्रिप किया।
आप यानी सिंध रोइंग क्लब के आप बानी भी हैं, तो या आपने वो रोइंग क्लब कायम किया, अब इस वक्त आप क्या हालात देखते हैं पाकिस्तान में रोइंग जैसे स्पोर्ट्स का मुस्तकबिल या हाल क्या देखते हैं? और जरा ये भी बताइएगा कि ये जो बैन अलाक्वामी मुकाबले होते हैं इसमें अक्सर टैलेंट को ये शिकायत होती है कि उनके नॉमिनेशन वहाँ की हुकूमतों के जो बोर्ड्स होते हैं या स्पोर्ट्स बोर्ड्स होते हैं उनकी तरफ से नहीं दिए जाते। किस तरह की सूरत हाल चल रही है स्पोर्ट्स में पाकिस्तान में?
अच्छा, सबसे पहली बात तो ये कि जैसे सिंध में हमने क्लब बनाया, सिंध रोइंग स्टार्ट की, इंटरनेशनल रोइंग लेकर आया सिंध को, ये आजाद है कि सिंध की इंटरनेशनल रोइंग सिंध ने लाई, और इस तरीके से हम चलते रहे। और वो वक्त ऐसा था कि हमें हर साल 2-3 ट्रिप इंटरनेशनल के मिल जाते थे, जिसकी वजह से आज मैं इधर पहुंचा हूं। अगर उस वक्त वो चीज़ नहीं होती तो फेडरेशन बहुत अच्छी थी, लोग बहुत अच्छे थे, जायद महमूद साहब सेक्रेटरी थे, मुमताज साहब प्रेसिडेंट थे, एक बहुत अच्छा ग्रुप, मिसेस कुरैशी इधर से उनको सपोर्ट किया इंटरनेशनल, तो एक बहुत अच्छा ग्रुप चला, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि आज मैं इधर रोइंग कर रहा हूँ। अल्लाह ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है कि मैं इस एज में भी आगे आज रोइंग कर रहा हूँ। तो उस वक्त तो बहुत अच्छा ग्रुप था, लेकिन आज ही जो ग्रुप है और पाकिस्तान का अगर स्टैंडर्ड देखे तो एक बेचारा हमारा लड़का था, हमारा बड़ा अच्छा दोस्त, वो चांस था कि वो एशियन मेडल जीतेगा, बट अनफॉर्चुनेटली इन 84 ही टाइड इन एन एक्सीडेंट, अदरवाइज पाकिस्तान बहुत अच्छा परफॉर्म करता। उसके बाद अक्रम एक और बंदा पाकिस्तान का आया जिसने 2 टाइम मेडल लिए रोइंग के लिए, 2 दफा ब्रॉन्ज मेडल लिया है, और इंडोर रोइंग में उस वक्त वो बेस्ट था पूरे एशिया के अंदर, तो वो भी बहुत अच्छा लड़का निकला। लेकिन उसके बाद ऐसी पॉलिटिक्स शुरू हुई कि ये लोग चले गए, और मैं भी एसोसिएट सेक्रेटरी था, मेट्रिक कमीशन का चेयरमैन था उस वक्त जब मैंने रोइंग 90s में छोड़ दी, लेकिन उन्होंने मुझे भी हटा दिया, साइड कर दिया, और इस तरीके से वो बैठ गए। तो अब जो पॉलिटिक्स हो रही, अब ये वो ये हो रही है कि जो लोग फेडरेशन में बैठ गए वो समझते हैं कि हम जो है ना, हम अनदाता हैं, हम जो चाहे कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट ये है, जो प्लेयर्स हैं वो इलेक्ट करते हैं एसोसिएशन को या डिस्ट्रिक्ट को, डिस्ट्रिक्ट जाके वो प्रोविंशियल को करती है, तो हमारे वहाँ पे कोई निज़ाम नहीं है, टोटल चोर मजा रही है, ये अपनी तरफ से पेपर के अंदर जाली जाली करके ले आते। अब ये सोच लें कि 2004 से जो है ना हमारे पास क्लब नहीं है, जो एक क्लब हमने बनाया था वो भी गिरा दिया गया, क्योंकि जो फेडरेशन आई काम नहीं किया, तो पीएससी ने टीम बंद कर दी, पीपी ने टीम बंद कर दी, और उसके बाद द वन वेरी डे के उन्होंने उस क्लब को बिल्कुल उड़ा दिया, गर्म कर दिया। लेकिन आज भी सिंधु एसोसिएशन पेपर में मौजूद है, आज तक उन्होंने कॉम्पिटिशन नहीं कराया 2004 के बाद से। और पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के मुझे दुख होता है ये बताते हुए कि मैंने जनरल साहब को लेटर लिखा, मैंने कहा यार अब तो प्रेसिडेंट ने भी लिखी थी, प्राइम मिनिस्टर ने भी कह दिया है कि यार जो बोलो तो आप ये बच्चों की एंट्री क्यों नहीं कराते हो, इवन दे डो नॉट अलाउ मी टू पार्टिसिपेट इन इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स। तो जब मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में जाना चाह रहा था तो उन्होंने मुझसे, रिजवान साहब जो प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा ये तो कॉम्पिटिशन ही कोई नहीं है, इसमें कहाँ आप चल रहे हो जा रहे हो, ये दैट इज इन राइटिंग दे इन्फॉर्म मी, जब मैंने उनसे मांग रहा हूँ। तो इस दफा तो ऐसे लगता है कि ये जो फेडरेशन है या हमारी पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन है, ये सारे बैंड कर रहे हैं। मेरी तीनों बेटियां थी, एक तो छोड़ गई, 2 अभी भी एक्टिवली स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व है, एक बैडमिंटन की पाकिस्तान नंबर 1 प्लेयर है, रबिया वेटलिफ्टिंग में माशाल्लाह अच्छी जा रही है, वो भी अपने इवेंट में चैंपियन है। लेकिन ये इनको पार्टिसिपेट ही नहीं करने देते, ये इनकी एंट्रियां नहीं डलाते, जबकि पैसे सारे हम दे रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद उसके बाद मैंने तो ये सजेस्ट तक किया, जो अपना जनरल साहब है पीओ के प्रेसिडेंट, मैंने कहा सर जी अगर ये आपके बंदे काम नहीं करते और दे एक्सपेक्ट सम मनी, तो व्हाई डोंट यू सेट अ ब्राइब मनी, कि हमें पता हो कि भाई हम ये काम करवाएंगे तो ये पैसे देने होंगे, तो हमारी एंट्री जरूर हो जाएगी बाद, तो एटलीस्ट ये हमसे और ज्यादा पैसे ठगने की कोशिश नहीं करेंगे। नंबर 2 जिसके पैसे लेंगे वो काम भी कर देंगे। लेकिन उन्होंने, बड़े अफसोस से कहना चाह रहा हूं मैं, कि प्रेसिडेंट साहब ने भी कोई जवाब नहीं दिया, नॉट अ सिंगल।
ये किस एसोसिएशन की बात कर रहे हैं आप शहजाद साहब?
ये मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन, जो इस वक्त सारी स्पोर्ट्स बॉडीज को रन कर रही है, जो ओलंपिक इंटरनेशनल ओलंपिक के अंडर आती है, वो पाकिस्तान ओलंपिक जो है ना वो एसोसिएशन है, जिसके प्रेसिडेंट जो है वो हमारे जनरल आरिफ साहब है, तो वो हालांकि वो जनरल है रिटायर्ड और वो इस वक्त देख रहे हैं। तो इनको मैंने उनसे लिखा है, मैंने कहा यार एटलीस्ट यहाँ पे हम जब आए हैं, इवन वी जस्ट सेंड एन ईमेल टू द ऑर्गेनाइजर, टू एनीवन, वी रिसीव अ रिप्लाई इमीडिएटली, और अगर वो अपनी टेबल पे मौजूद नहीं है, मैं इधर आया, मैंने पूछा यार मुझे इंडोर रोड पर प्रैक्टिस मिलेगी, फॉरन जैसे ही मिल गया रिप्लाई आ गया कि भाई आई एम नॉट ऑन द सीट, आई एम इन द कंपटीशन, दिस इज माय नंबर, इफ यू हैव इमरजेंसी प्लीज कॉल ऑन दिस नंबर। वहां पे तो किसी से आप बात ही नहीं कर सकते हो। मेरी जो माहूर है उसको उन्होंने कहा कि आप आईबीए छोड़ दो अगर आपने सैफ गेम्स में पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि आपको कैंप में रहना जरूरी है और आईबीए 4 छुट्टियों से ज्यादा देता नहीं था। तो मैंने बोला यार ये आईबीए क्यों छोड़े, पढ़ाई क्यों छोड़े, आप कैंप में अंदर रख के लड़की बच्चे का ट्रेन कर लो, और अगर आपकी बच्ची इससे कोई अच्छी होती है तो इसको हराओ और ले जाओ, लेकिन अगर ये कैंप में ना रह के भी अपनी प्रैक्टिस कर रही है और अच्छी है तो ये क्यों ना जाए। तो आप यकीन करेंगे उस वक्त वो सैफ गेम्स में पाकिस्तान सिल्वर मेडल जीत सकता था, लेकिन पाकिस्तान बैडमिंटन की पॉलिटिक्स की वजह से वो हमने सिल्वर मेडल गवाया और ब्रॉन्ज मेडल पे जो है ना हमने तबाह किया। तो ये हमारी एक जो है ना बड़ी दर्द भरी कहानी है, और ये जो मैं इधर आया हूँ ये मेरे अपने एफर्ट्स हैं, ये मेरी अपनी नॉलेज है, मेरे अपने कॉन्टैक्ट्स हैं।
तो ये आपने आप यानी इन जो ऑस्ट्रेलिया में पैन पैसिफिक मास्टर्स गेम हो रहे हैं जिसमें आपने कांसी का तमगा अभी रोइंग में जीता है, वो आपने खुद अपनी बराह रास्त इनफरादी कोशिशों से आपने इसकी इंट्री दी है? पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन या पाकिस्तान के किसी स्पोर्ट्स बोर्ड ने आपकी कोई एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं की?
नहीं जनाब, मैंने तो जो हमारे प्रेसिडेंट ने रोइंग के सो कॉल्ड एडवांस आप उनको ईमेल लिखी, भाई मैं अब जाना चाह रहा हूं। इवन के 2016 में मैंने अमेरिका में 2 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीते इंडोर रोइंग कॉम्पिटिशन में, तो उन्होंने एक न्यूज तक नहीं निकाली। तो इस दफा मैंने बोला भाई मैं जा रहा हूँ, तो मुझे कोई आप लेटर शेटर इशू करोगे ताकि अगर मैं वीजे के लिए जाऊँ तो फिर वो देखाए और मैं बोलूँ कि हाँ भाई मैं पाकिस्तान रोइंग का मेम्बर हूँ और मैं इधर जा रहा हूँ। उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया। उसके बाद हमारी पाकिस्तान ओलंपिक के अंदर एक एग्जीक्यूटिव कमेटी है, उसको मैंने सब लोगों को ईमेल डाली कि देखो यार ये रिजवान नहीं ये जवाब दे रहा है, किसी ने रिप्लाई नहीं किया। इवन एथलीट कमीशन सो कॉल्ड बनाया हुआ है तो रबिया का भी नहीं वो जवाब दे रहे थे, तो रबिया के लिए मैंने उस एथलीट कमीशन की जो प्रेजेंट उनको दिया। तो आप यकीन करेंगे जब पाकिस्तान बैडमिंटन बैंड थी तो मैंने पाकिस्तान जब माहूर मेरी जूनियर थी बची तो मैंने उनको मेल लिखी, मैंने कहा यार वी एग्री कि हमारी प्रॉब्लम है कि हमारे जजेस ये डिसाइड नहीं कर पा रहे, 4-4 साल तक केसेस चल रहे हैं, हु इज राइट हु इज रॉन्ग, तो आपने दोनों फेडरेशन को क्यों बैन कर दिया? आप तो प्लेयर मार रहे हो यार, आप इनको खेलने दो, 2 क्या 3 फेडरेशन हो जाए, अगर वो लड़के बाहर इंटरनेशनली भेज सकते हैं तो 100 बिस्मिल्लाह भेजने दो, तो ये तो स्पोर्ट्स की डेवलपमेंट होगी। तो आप यकीन करेंगे उसका हर रोज मेरे को जवाब आता था, एंड एवरी डे शी यूज्ड टू से कि जी हम वर्क कर रहे हैं, आई एम वर्किंग विद द काउंसिल, और उसने बैडमिंटन फेडरेशन बैडमिंटन वर्ल्ड के काउंसिल के साथ बात की और उनको ये बात समझाई और उन्होंने एग्री किया और उन्होंने पाकिस्तान बैडमिंटन के ऊपर से बैन हटा दिया। तो ये वो जवाब देते हैं। और हमारे यहाँ पे एथलीट्स कमीशन की हैं, उनको मैंने मेल की है, आज मेरे ख्याल में 10-15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, अभी तक एक ना फोन कॉल आई है ना जवाब आया है। मैंने उनको मैसेज भी किया है कि मैंने आपको ईमेल की है, इसको देख ले, इसका जवाब दे दे। जो वाइस प्रेसिडेंट्स हैं, वाइस प्रेसिडेंट्स हैं, सेक्रेटरीज हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं, और बहुत सारे कमीशन बने हुए, जिस तरह के ओलंपिक की रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट पूरी की गई है, लेकिन काम एक शख्स नहीं कर रहा है। ये 100-150 लोग होंगे लेकिन इनमें से एक भी काम करने को तैयार नहीं है।
मोहम्मद शहजाद साहब, अब हुकूमत तब्दील हुई है और पाकिस्तान में जो स्पोर्ट्स से ताल्लुक़ रखने वाला एक आइकॉनिक शख्स पाकिस्तान का वज़ीर आज़म मुंतखब हुआ, क्या आपको कुछ उम्मीद है कि सूरत हाल पर कुछ फ़र्क पड़ेगा इससे?
इससे देखिए ना फ़र्क पड़ सकता है, और इमरान खान से बड़ी उम्मीद है क्योंकि वो खुद भी खिलाड़ी हैं और कुछ करें ना करें उनको स्पोर्ट्स को तो ऊपर लाना ही चाहिए। लेकिन जब तक के ये, मैं इसको करप्शन नहीं कहूँगा, जब आप एक जगह पे बैठे हो अपनी मर्जी से आए हो, आपने एक जगह ली है और उस जगह के ऊपर आप जवाब नहीं दे रहे हो तो आप करप्शन ही कर रहे हो ना। तो मैंने तो इवन इतना कहा है कि यार आप ब्राइब शुरू कर दो लेकिन बट काम तो कर लो, क्यों मुल्क को तो तबाह नहीं करो ना, मुल्क तो बचा लो। तो अब यही बात है कि इमरान खान कितना सीरियसली लेते हैं इसको, क्या वो इनको कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं, क्या वो इनको कुछ देखने को।
आप आने वाले कुछ अपने मुकाबलों के बारे में भी जिक्र कीजिएगा, आप मुस्तकबिल में कोई और ऐसे आलमी सतह के मुकाबले हैं जिनमें आप हिस्सा लेने का इरादा रखते हैं?
जी मैंने अब क्योंकि मैं इधर अपने आप को ट्राई करने आया हूँ, मेरी फिटनेस लेवल क्या है, मैं किस स्टैंडर्ड पे इधर हूँ, और उसके बाद इंशाल्लाह मैं बड़ा हो रहा हूँ तो और जाके मेहनत करूँगा, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगले ईयर इनको आगे यहीं पर हराऊंगा, दिस इज माई गोल।
चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने कांसी का तमगा फ़िलहाल हासिल किया है रोइंग में 2000 मीटर की, और आगे और भी मुकाबले हैं। विश यू द बेस्ट, हम आपकी कामयाबी के लिए दुआगो हैं और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान का बैरून ममालिक में आप इसी तरह नाम रोशन करते रहेंगे।
इंशाल्लाह ज़रूर, बड़ी शुक्रिया आपकी सपोर्ट का, आपकी दुआओं का, और मुझे आपकी दुआओं के बाद काफ़ी शुरू है कि इंशाल्लाह मैं और मेडल भी यहीं से निकालूंगा।
गोल्ड कोस्ट में 11वें पैन पैसिफिक मास्टर गेम्स मुनक्किद हो रहे हैं और उनमें इंडोर 2000 मीटर रोइंग में कांसी का तमगा हासिल करने वाले मोहम्मद शहजाद हमसे बात कर रहे हैं।
अगर आप इसी तरह की और कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो SBS रेडियो ऐप पर हमारे मुस्तकिल पॉडकास्ट को सब्सक्राइब कीजिए।